स्वागत है इस नई गहरी चर्चा में, जहां हम अलग अलग स्रोतों और नोट्स को खंगालते हैं। आज हमारे पास ना एसी भक्त वेदांता स्वामी प्रभुपादा की किताब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं।
हाँ, और इस टॉपिक की सबसे खास बात यह है कि ये प्राचीन भारत के सांख्य दर्शन को एकदम नए नजरिए से देखता है।
बिल्कुल, और हमारा आज का जो मेन मिशन है ना, वो यही है कि हम इस सांख्य फिलॉसफी की गहराइयों को समझें। क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब हम पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते ना, तो ऐसा लगता है जैसे
जैसे कोई बहुत मोटी सी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो, जिसे लोग बस
हाँ बस अपनी बौद्धिक जिज्ञासा या इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी के लिए पढ़ रहे हैं। पर इस बुक का दर्शन अलग है। ये उस मैनुअल को पढ़कर ना पूरी मानव जीवन वाली जो मशीन है उसको ठीक करने और मुक्ति पाने के बारे में है।
सही बात है, ये सच में इतिहास और अध्यात्म का बहुत अनोखा संगम है, क्योंकि हम यहाँ कपिला मुनि की बात कर रहे हैं और वैदिक परंपरा में ना इन्हें कोई आम ऋषि नहीं माना जाता।
अच्छा, तो फिर इनका स्टेटस क्या है वहाँ?
इन्हें सीधा परम सत्य यानी भगवान कृष्ण का अवतार माना गया है, और इनकी कहानी बहुत रोचक है। इनके पिता महान योगी कर्दमा मुनि थे, जिन्होंने जब संन्यास लेकर वन जाने का निर्णय लिया
तो उन्होंने अपनी पत्नी देवाहुति को कपिला के पास छोड़ दिया, राइट?
एग्जैक्टली, देवाहुति को अपने ही बेटे की देखरेख में छोड़ दिया गया।
पर एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। एक माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, उसको पला पोसा, वही माँ अचानक अपने ही बेटे की शिष्या बन गई।
सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ, मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? समाज का नियम और रिश्तों का जो ढांचा है वो तो इसके बिल्कुल उलट है, जहां बेटा माँ के चरण छूता है। तो ये अचानक शिष्या कैसे बन गई?
ऊपर से देखने पर यह उल्टा जरूर लगता है, पर यहां बात भौतिक रिश्तों की नहीं हो रही है, यहां बात आध्यात्मिक ज्ञान की है। देवाहुति समझ चुकी थी कि वो भौतिक अज्ञानता यानी उस इग्नोरेंस के अंधेरे में फंस चुकी हैं।
अच्छा, तो उनको रियलाइज हो गया था कि उनका बेटा कोई आम बालक नहीं है?
बिल्कुल, उन्हें एहसास हुआ कि कपिला एक मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु हैं, और इस अंधेरे को काटने के लिए उन्होंने अपने बेटे से जिस ज्ञान की मांग की ना, वही ज्ञान आज सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है।
ओह वाओ, तो फिर ये सांख्य दर्शन आखिर काम कैसे करता है? एक माँ की अज्ञानता को दूर करने में इसमें ऐसी क्या ताकत है और इसकी विधि क्या होती है?
इसे समझने के लिए ना हमें संख्या शब्द पर ध्यान देना होगा। इसका शाब्दिक अर्थ है गिनना या तो काउंट।
गिनना, क्या गिनते हैं इसमें?
ये ना भौतिक सृष्टि के 24 भौतिक तत्वों का बहुत ही तार्किक विश्लेषण करता है, जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इसके अलावा जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे मन, बुद्धि और अहंकार।
अच्छा, मतलब माइंड और ईगो को भी भौतिक ही माना गया है?
हाँ बिल्कुल, संख्या सिखाता है कि एक एक करके इन तत्वों को गिनो और पहचानो, और जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसका शरीर और दिमाग सिर्फ इन 24 तत्वों का मेल है, तो वो खुद को
उनसे अलग देख पाता है।
हाँ, वो खुद को 25वें तत्व यानी आत्मा के रूप में पहचान लेता है।
समझ गई, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना जैसे अगर मैं किसी गाड़ी को खोलकर उसके एक एक पुर्जे को अलग अलग करके देख लूं, तो मुझे अचानक समझ आ जाएगा कि मैं गाड़ी नहीं हूँ, बल्कि उस गाड़ी को चलाने वाली ड्राइवर हूँ।
क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी दी आपने, यही आत्मा और पदार्थ का अंतर है।
पर मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या सिर्फ भौतिक चीजों को गिनने से या एनालाइज करने से रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाती हैं?
यही तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरी चर्चा का। जब आपको पता होता है कि गुस्सा या दुख सिर्फ मन और बुद्धि का खेल है, जो खुद मटीरियल तत्व हैं, तो आप खुद को उनसे थोड़ा डिटैच कर लेते हैं।
राइट, वो डिटैचमेंट आने लगता है।
हाँ, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस विश्लेषण का आखिरी लक्ष्य सिर्फ ऐसे बैठकर गिनना नहीं है, इसका असली लक्ष्य ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम यानी भक्ति को पाना है।
ओह, तो अल्टीमेट गोल भक्ति है संख्या का।
बिल्कुल, और इस ज्ञान को सच में उतारने के लिए इंसान का सत्व गुण में होना जरूरी है, यानी उसके भीतर शांति, पवित्रता और आत्मनियंत्रण होना चाहिए।
ये सब सुनकर तो मुझे एक और बात लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी न किसी मशहूर ब्रांड का नाम तो चुरा लिया हो, पर उसकी रेसिपी पूरी तरह से बदल दी हो।
अच्छा, वो कैसे?
क्योंकि आजकल एकेडमिक दुनिया में यूनिवर्सिटीज में जिसे संख्या दर्शन बताया जाता है उसमें तो ईश्वर या भक्ति का कोई जिक्र ही नहीं होता। वो तो सिर्फ एक ड्राई एनालिसिस बनकर रह गया है।
सही पकड़ा आपने, और यही इस इतिहास का सबसे हैरान तंगेज बनना है। समय के साथ आगे चलकर ना एक और कपिला हुए थे जिन्होंने एक नास्तिक संख्या का प्रचार किया था।
वेट, रियली?
हाँ, और उस नकली दर्शन ने सिर्फ उन 24 भौतिक तत्वों की गणना पर ही ध्यान दिया, पर जो आत्मा और परम सत्य था ना, उसको उसमें से बिल्कुल निकाल दिया। आज के एकेडमिक्स में ज्यादातर उसी नास्तिक संख्या को पढ़ाया जाता है।
तो जो असली देवाहूति पुत्र कपिला थे उनका जो थियस्टिक या आस्तिक संख्या था वो तो एक तरह से भुला ही दिया गया।
हाँ, उसको लगभग भुला दिया गया है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से जुड़ना सिखाया गया था।
यानी हमने उस आध्यात्मिक ज्ञान को भी बस एक बौद्धिक कसरत बना दिया है, जिसका मूल उद्देश्य हमें ईश्वर से जोड़ना था वो तो पीछे ही छूट गया।
आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। जब तक आत्मा इन भौतिक तत्वों की गणना से आगे बढ़कर उस परम सत्य से प्रेम नहीं करती, तब तक सच्ची मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती।
तो फिर इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा चिंतन का विषय सामने आता है। अगर आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली सिर्फ उस नास्तिक सांख्य की तरह भौतिक तत्वों के एनालिसिस पर ध्यान देती है, तो क्या मानव जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य छूट रहा है?
ये सच में सोचने वाली बात है।
हम भावनाओं से मुक्त होने के बाद ही हमारे भीतर उन सच्चे दिव्य जज्बातों का आगमन होता है जहां आत्मा का असली आनंद छिपा है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे खोलना ही शायद किसी नए सफर की शुरुआत हो सकती है।